أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم لیکچر نمبر 29 میں پڑھ رہے تھے کہ نگاہ کیا ہے. تو پہلا جملہ یہ بتایا گیا کہ نگاہ یا نظر جو ہے یہ اصل میں کائنات کو ہی کہتے ہیں. کائنات جو ہے یہ نگاہ یا نظر ہے. اور بات یہاں ختم ہوئی کہ یہ ساری نظر جو ہے یہ اللہ کا دیکھنا ہے. اللہ نے اپنے دیکھنے کو دیکھا اور کائنات نے پھر اللہ کے دیکھنے کو دیکھا. یہ قانون آپ نے سنا. اسی میں پھر وہ چاروں نہروں کا یا چاروں عباد کا تذکرہ آیا کہ نہر تسوید کیا ہے, وہ زمانیت ہے تو پھر مکانیت کیا ہے, تو نہر تشہید کیا ہے, پھر نہر تزہیر کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ساری انہی کو چار عباد کہا گیا. اس کے بعد علم الاسماء کی بات آئی کہ علم الاسماء میں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہیں ان کے استعمال کا, صلاحیتیں اور صفات, وہ صفات کو استعمال کرنے کا علم الاسماء. لیکن ایک بہت قانونی بات جو اور بہت بڑا نقطہ جو واضح کیا حضور مرشد کریم نے, وہ یہ کہ براہ راست طرز فکر, علم الاسماء اصل میں براہ راست طرز فکر کو کہا گیا. براہ راست طرز فکر کیا ہے؟ یہ براہ راست طرز فکر جو ہے یہ ہے وہ اصل چیز جو علم الاسماء تک لیڈ کرتی ہے ہمیں. براہ راست طرز فکر ہے جو ہمیں, یا جس کو ہم علم الاسماء کہتے ہیں. یعنی جب یہ طرز فکر حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ دیکھ لیتا ہے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے, اصل مطلب کیا ہے, کس صفت کو اللہ کیسے استعمال کر رہا ہے. تو پھر اس کی مثالوں میں سے ایک مثال علیم, یعنی علم کا سورس اور منبع. میں نے عرض کیا کہ علیم اور عالم میں کیا فرق ہے. پھر خبیر کا ذکر آیا, پھر بصیر کا آیا, پھر محیط کا آیا. تو اس طرح چار پانچ ناموں کو ایکسپلین کر کے اب بات آ گئی یہاں پہ کہ ارتقاء کیا چیز ہے. اب اس میں یعنی کہ اللہ کے جو نام اسماء ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں. جب یہ صفات ہیں تو یہ سارا کیا نظام جو ہے اس میں ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. ارتقاء کہتے ہیں ایولیوشن کو. ایولیوشن کہتے ہیں کسی چیز کا گریجولی نشو نما پا کر آگے بڑھنا. اب ایک چیز ہے فزیکل گروتھ, جسے ہم جیسے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھاتا پیتا سوتا جاگتا کرتے کراتے کیا ہوتا ہے, گرو کرتے کرتے جوان آدمی بن جاتا ہے. تو ایک ارتقاء کی صورت یہ ہے, لیکن اس کو نشو نما کہتے ہیں. ایک ارتقاء یہ کہ بندہ فکری طور پر ایوالو کرتا ہے. اب یہ ارتقاء کو ڈیفائن کر رہے ہیں حضور مرشد کریم, فرما رہے ہیں کہ شعور کی سطح سے بلند ہو کر لاشعور میں تفکر کیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کائنات پر ایک واحد ہستی حکمران ہے. اس یکتا ہستی نے کائنات چلانے کے لیے ایک مربوط نظام بنایا. اس نظام کے تحت زندگی کی ابتدا اور انتہا کائنات کا سفر ہے. زندگی کی ابتدا یعنی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ کہیں جا کے کلمینیٹ ہوتی ہے, کہیں جا کے وہ اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے, اور یہی سارا کائنات کا سفر ہے. اور یہ جو ایک سب مربوط نظام ہے کائنات چلانے کے لیے, ایک مربوط ربط میں ایک دوسرے سے وہ جڑا ہوا ہے, اس میں کہیں کوئی گیپ یا فلا نہیں ہے, ایسا مربوط نظام بنایا. اور اس نظام کے تحت یہ جو زندگی چل رہی ہے ابتدا سے اپنی انتہا تک, اصل میں تو یہی ارتقاء ہے کہ زندگی اپنی ابتدا سے آغاز ہو کر اپنی انتہا تک پہنچ کر ختم ہو رہی ہے. اور یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے تو یہی کائنات کا سفر ہے. اب اس کو اگر آپ ایک फर्द की जिंदगी पे लगाएं या पूरी कायनात पे आप लागू कर दें। तो कायनात पे लागू करेंगे तो फिर हजूर मुर्शिद करीम के अल्फाज में कि पहली मंजिल में कायनात ने खुद का इदराक किया, यानी कायनात को महसूस हुआ कि मैं हूं। दूसरे कदम पर इस बात की आगाही हासिल की कि मैं मखलूक हूं। पहले तो था कि मैं हूं, तो मैं कौन हूं, मैं मखलूक हूं, ये दूसरी बात हुई। और मेरा बनाने वाला खालिक, एक खालिक है और उसका नाम अल्लाह है। तीसरे कदम पर कायनात ने नोई एतबार से इदराक किया, यानी उसको एहसास हुआ कि मैं शेर हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं इंसान हूं, मैं गधा हूं, वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी नोई एतबार से। चौथे कदम पर कायनात ने नोई हवास को अलग अलग समझा और हर नौ इस बात से वाकिफ हो गई कि हर नौ के अफराद मुश्तरक होने के साथ साथ जुदा गाना हैसियत भी रखते हैं। यानी फिर आपको अपने फर्द होने का एहसास हुआ कि मैं एक तरफ, अब देखिए चार सतहें आ गई ना, अल्लाह के जहन से निकले, कायनाती सतह पे आए, अपने होने का एहसास हुआ, उसके बाद आपको नौ होने का एहसास हुआ, उसके बाद हमें अपने फर्द होने का एहसास हुआ, ये चौथी दर्जा हो गया। और ये एहसास भी हो गया कि भाई हर नौ के अफराद बेसिकली तो मुश्तरक हैं, सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, यानी सब एक ही हवा इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी एक जैसा पी रहे हैं, रोशनी एक तरह इंजॉय कर रहे हैं, अंधेरा एक तरह मतलब उसे बर्दाश्त करते हैं, जो भी कहें। ये सारा कुछ अलग अलग, यानी कि इश्तराक भी है और अलग अलग भी है, यानी जुदागाना हैसियत रखते हैं। इस हद तक कि किसी दो अफराद के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। कभी आप गौर करें, किसी दरख्त के दो पत्ते आप एक जैसे तोड़ के ला के दिखा दें, या दो पत्ते तोड़ें उन्हें पास पास रखें, कभी किसी दो दरख्त के दो पत्ते आपस में नहीं मिलते। यानी वैरायटी की ये इंतहा है, इसलिए कि वो हर चीज़ जुदागाना हैसियत रखती है, इसलिए उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। यानी जुदागाना हैसियत का मतलब है कि इंफरादी शनाख्त रखते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं। अब इंफरादी हैसियत में जब नौ ने अपना इदराक कर लिया तो दूसरा सफ़र शुरू हुआ। इंफरादी हैसियत में जब आपको अपना एहसास हो जाए, फिर आपको अपनी नौ का एहसास हो जाए, तो वापसी का सफ़र शुरू होता है। यानी आप ऊपर से नीचे को आ रहे थे डिसेंड करते हुए। पहले दर्जे पे आपको एहसास था कि पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं हूँ, मैं बस मैं हूँ, फिर मैं इंसान हूँ, फिर मैं मखलूक हूँ, तो इंसान, उसमें नौ का फर्क आ गया, फिर अफराद का आ गया, पता चला कि अम्मा ने एक नाम रख दिया। ये इनफरादी हैसियत में जब फिर एहसास वापसी का, अब देखें ना, एक बच्चे को जब एहसास होता है कि मैं बनी नौ आदम से ताल्लक रखता हूँ और मेरा शऊर हजरत आदम तक जाता है, तो पूरी नौ का शऊर जब वो हासिल करता है तो गोया ये वापसी का सफ़र शुरू हो गया। अब ये सफ़र जो वापसी का है, ये ज़हनी और रूहानी सफ़र, यानी पहला सफ़र नज़ूली था, कायनात ने ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियां तय की, और जब कायनात नोई एतबार से इनफरादी शक्ल सूरत में जाहिर हो गई और हर फर्द ने अपने वजूद का इदराक कर लिया, तो सऊदी सफर शुरू हो गया। अब इस नजूली और सऊदी सफर का नाम इर्तका है, ये है इर्तका की असल डेफिनेशन। क्या आप ऊपर से नीचे तक आए, यहाँ आके इजहार हुआ। अब ये सारा नजूली और सऊदी की तकरार करके देखें, यहाँ पे वो पूरी पिक्चर वाजे होती जा रही है कि किस तरह अल्लाह के जहन से कायनात इब्तदा हुई, कायनात में नौएं आईं, नौ के बाद अफराद आ गए, और वापसी पे हमारा सफ़र, अब हमें इनफरादी सतह पे नौई हैसियत का एहसास होगा, फिर हमें पूरी कायनात जितना जहन बन जाएगा, फिर हम अल्लाह को जानेंगे। तो इस तरह नजूली और सऊदी सफर का नाम इर्तका है, यानी नजूल किया चार दर्जे नीचे और वापस किए चारों दर्जे तय करके हम वापस ऊपर को, तो ये है इर्तका। इसी तरह आलम नासूत से आलम अरवाह की तरफ लौटने का नाम इर्तका है, मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये है एवोल्यूशन। क्या एवोल्यूशन है? कि आपका जहन आलम नासूत से ऊपर उठ के आलम मलाइका, फिर उससे ऊपर उठ के आलम अरवाह की तरफ लौटने का काम करता रहे, और ये एवोल्यूशन। अगर आप आलम अरवाह से वाकिफ हो गए तो ये रूहानी सफर हो गया, इसका नाम है इर्तका। अब इर्तका किस तरह हो रहा है और ये कायनाती सफर किस तरह तय किया जा रहा है? अब अगर हमारा जहन बंद हो गया, हमने कुछ सोचा ही नहीं, हमने इन चीजों का इदराक और शऊर ही नहीं पैदा किया, तो सफर कहाँ हुआ? हम तो रुके खड़े हैं। तो अगर हम ये सोचें कि ये इर्तका जो होना है, एक हर फर्द ने अपने जहन को खुद इवॉल्व करके नौ का इदराक हासिल करना है, फिर वहां से ऊपर उठ के पूरी नौ का मजमुआ यानी कायनात, कायनात का इदराक हासिल करने के बाद उसने खालिक का इदराक करना है। ठीक है जी, तो ये किस तरह तय किया जा रहा है? अब कायनाती इर्तका बराह रास्त हवास से मुतालिक है। हवास किसे कहते हैं? हिसियात को। हिसियात क्या है? महसूस करना। ये जो महसूस करना है ये है हवास का इस्तेमाल। अब कायनाती इर्तका बराह रास्त हवास से मुतालिक है, यानी अब इस जुमले के दो माने, एक ये कि इर्तका का ताल्लुक डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेंसेस है, सेंसेस काम करेंगे तो आप सफर करेंगे। दूसरा है बराहे रास्त हवास, यानी डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं। हम चूंकि चीजों को मादी सतह पे इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ देखते हैं और फील करते हैं, लिहाजा वो सारी फिक्शन है, लिहाजा वो सारी गलत है। तो कायनाती इर्तका बराहे रास्त हवास से मुतालिक। अब ये जुमले की साख्त ऐसी है कि इसके दोनों मतलब निकलते हैं और दोनों ठीक हैं, कि कायनाती इर्तका का ताल्लुक बराह रास्त महसूसात से, यानी इर्तका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंसेस, प्रोपोर्शनल यानी जितने ज्यादा आप हवास का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा वो खुलेंगे, जितनी ज्यादा उनकी स्पीड बनेगी उतनी ज्यादा आपकी तरक्की होगी या उतना ज्यादा जहन खुलेगा। दूसरी तरफ कायनाती इर्तका बराह रास्त हवास से मुतालिक है, यानी डायरेक्ट सेंसेस, और ये पीछे जो सारा अल्लाह के देखने को देखते हैं, नजर जो है वो कायनात है, ये सारी चीजें रास्त हवास की तरफ इशारा कर रही है। और वो और हवास का ताल्लुक ख्यालात से। अब ख्यालात इंफॉर्मेशन है, इतलात है, यानी कि इतला का नाम है वाहमा। वाहमा ख्याल बना, ख्याल से तस्वीर बनी, तसव्वुर कहलाया। तसव्वुर ने आगे एहसास की शक्ल बनी, उसके बाद जो अगला जिंदगी का मरहला है कि वो माइंड से बात निकलकर एहसास माइंड में है, नस्मा में, वहां से दिमाग में आया यानी ब्रेन में आया, ग्रे मैटर में आया। ये ग्रे मैटर में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होना शुरू हो गई उस एहसास की शिद्दत से। एहसास की वजह से ग्रे मैटर में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के नतीजे में बॉडी में केमिकल इंपल्सेस शुरू हो गई, केमिकल्स बनना शुरू हो गए। उसके बाद वो बन गए मोटर इंपल्सेस। ये मोटर इंपल्सेस जो हैं, ये बातें हजूर मुर्शिदे करीम ने यहां पे नहीं कही, मैंने इजाफी तौर पे ऐड करके अर्ज कर दिया कि हवास का ताल्लुक, ताकि ये पूरी तस्वीर वाज़ेह रहे कि ये वाहमा से किस तरह मोटर इंपल्सेस यानी बॉडी पे जो असरात होते हैं, ये जो हमारे सारा निजाम चल रहा है जिस्मानी, ये असल में पूरी उसे तला पे बेस कर रहा है, पूरी तला क्योंकि ये बीच का लिंक मिसिंग होता है तो फिर हम समझ नहीं पाते कि भी बॉडी पे जो असरात हैं वो इतला से कैसे हो रहे हैं। तो पीछे से कि तला रही है, ख्यालात बन रहे हैं, ख्यालात से तसव्वुरात, तसव्वुरात से एहसासात, और फिर उसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, केमिकल इम्पल्सेस, और फिर उसके बाद मोटर इम्पल्सेस बन रही हैं। तो यहाँ पे हुजूर फरमा रहे हैं कि ख्यालात इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ख्यालात यानी इतलात का कहीं ना कहीं सोर्स है। मखलूकात की जिंदगी के तमाम आमाल हरकत, मखलूकात की जिंदगी के तमाम आमाल और हरकत, आमाल मोटर इम्पल्सेस और हरकत, ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं फिजिकल जोन में, मूवमेंट्स जो हैं ये मोटर इम्पल्सेस कहलाते हैं, उससे ऊपर के जोन में वो केमिकल, रोशनियों में तब्दीलियां ही केमिकल इम्पल्सेस हैं। उसके बाद ये तमाम हरकत और सकनात जो सफर का जरिया है, रोशनी है। साफ लिख दिया ना कि जिंदगी के तमाम आमाल और हरकत जो सफर का जरिया है, यानी कि ये तमाम आमाल और हरकत एक रिकॉर्ड बन रहे हैं और हम एक तरह के सफर में हैं, हम मुसाफर हैं, रास्ता लाशऊर है, ये बात भी वाज़ेह कर चुके हैं पीछे। अब यहाँ पे जो जाविया सामने आया कि असल चीज है रोशनी, अभी रोशनी से मुराद बार बार मैंने अर्ज किया कि तसव्वुरात को कहते हैं, देखते जाइए कि यहाँ पे किस तरह से इस बात को वाज़ेह किया जाएगा कि रोशनी के जरिए देखते हैं। अब हम मटेरियल, ये जो विजिबल लाइट है, इसकी बात हो रही है कि हम रोशनी के जरिए देखते हैं, रोशनी के जरिए सुनते हैं, रोशनी के जरिए समझते हैं, रोशनी के जरिए छूते हैं। बल्फाजे दीगर हमारे तमाम हवास रोशनी हैं। अगर दरमियान में से रोशनी को निकाल दिया जाए तो हवास खत्म हो जाएंगे। छोटी सी मिसाल है, कमरे में लाइट जल रही है, आपको चीजें दिख रही हैं, लाइट ऑफ कर दीजिए, एकदम कमरा अंधेरे में चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कहां पड़ी है, हाँ या नहीं, यानी हवास खत्म हो गए। क्या हुआ? रोशनी की से। अब ये रोशनी को आप और मैं इस तरह से देखते हैं, रूहानी बंदा ये देखता है कि ये असल में हमें तसव्वुरात मुंतकिल करने का सबब है, वो रास्ता से फिक्र में यूं देखते हैं। अगर दरमियान में से रोशनी को निकाल दिया जाए तो हवास खत्म हो जाएंगे, यानी तसव्वुरात नहीं होते तो हवास भी नहीं बनेंगे। रोशनी की बिसात टूट जाए तो पूरी जिंदगी बिखर जाएगी, तो बुनियाद नहीं होगी तो इमारत भी नहीं रहेगी। अब ये रोशनी के जाल पर, यानी एक नेट, नेटवर्क है, लहरों का एक नेटवर्क, एक रास्ता बना हुआ है, रोशनी के तार ताने बाने की तरह, तार एक दूसरे से इतने करीब हैं कि इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यानी लाइट में आपको रेज अलग अलग नहीं दिखती, अब ये भी बात है। अब एक मिसाल देखें, आप एक सफेद कागज लेकर पेंसिल से दरख्त के नक्शो निगार बनाए, अब दरख्त की तस्वीर के खाके के चारों तरफ रंग भर दें, खाके में नहीं भरना, दरख्त बनाया, ड्रॉ किया, उसके बाहर रंग भरें, तो आप कागज पर दरख्त नजर आएगा, यानी वो खिला जो है, वो गैप जो है जिसमें आपने रंग नहीं भरा, वो दरख्त की सी शक्ल दिखेगी, तो आपको कागज पर दरख्त नजर आएगा। अगर कागज के ऊपर से रंग मिटा दिया जाए और कागज को सफेद कर दिया जाए तो दरख्त नजर नहीं आएगा। यानी ये जो साइड की रोशनी है, जहां ये हमारा या दरख्त का वजूद असल में खिला है, अब ये इस तरफ जा रही है बात। अब कागज पर रंग जो है ये रोशनी है, और दरमियान के स्केच, इस रंग के दरमियानी स्केच, यानी कि वो खाका सा जो दरख्त का, या ये कायनात है, जिस तरह कागज के ऊपर रंग ने दरख्त का हाता किया हुआ है, इसी तरह अल्लाह के इल्म ने कायनात का हाता किया हुआ, यानी ये मिसाल देखें, रंगों की मिसाल देके बिल्कुल जहन में एक मंजर क्रिएट कर दिया कि इस तरह से अल्लाह का इल्म फैला हुआ है। अल्लाह के इल्म में जहां जहां ये खिला बना, वॉइड खिला, जहां फिर उसके अंदर जो डायमेंशंस बनी, जो हदें हदबंदियां बनी, हमने उनका नाम कहीं दरख्त रख दिया, कहीं मुख्तलिफ अनवा के नाम लेते जाइए, कुत्ता बिल्ली सुअर वगैरह जो भी है। इसी तरह अल्लाह के इल्म ने हर तरफ इल्म फैला हुआ है। इसी तरह जिस तरह कागज के ऊपर दरख्त नजर आ रहा है जबकि वो खिला है, यानी अगर आप कागज पे स्केच बना के उसके गिर्द रंग भर दें तो दरमियान में जो चीज नजर आ रही है वो तो खिला है, खाली जगह है, लेकिन उसके चूंकि डिजाइनिंग है आप उसको देख के कहते हैं ये तो दरख्त बना हुआ है, हालांकि रंग उसके अंदर नहीं भरे हुए, रंग बाहर भरे हुए। ये है डायरेक्ट अप्रोच, जबकि वो खिला है। तो जब हम चीजों को खाली देखना और ये समझना शुरू कर देंगे कि रोशनी इसके गिर्द है, यानी ये अल्लाह के इल्म इत्तलात जो हैं वो बाहर हैं, अंदर खिला है, खिला की एक शक्ल है, उसके अंदर ये चीजें ये तसव्वुरात भर गए तो ये चीज मेज हो गई, ये कुर्सी हो गई, ये अलमारी हो गई, तो ये टेबल हो गया वगैरह जो भी कहिए, ठीक है जी। इसी तरह कायनात का हर जर्रा खिला की सूरत में अल्लाह के इल्म में। अब ये बात आपकी मटेरियल साइंस भी मानती है, वो कहती है प्रोटॉन एक छोटा सा टुकड़ा है, जर्रा है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और दरमियान में सब खिला है। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनने वाले एटमों से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने और मॉलिक्यूल से आगे फिर ये चीजें वजूद में आई जिसे अनासर कहते हैं। ये अनासर की तरतीब साइंस यहाँ पे पजल है कि ये कौन कर रहा है भाई। ये है वो बरतर अजवराए लाशऊर जो सारी चीजों को डिजाइन करके नीचे ला रहा है और अनसरियत का लिबास पहना रहा है। अब उसने रोशनी के एक टुकड़े, एक जुज फोटोन के टुकड़े इलेक्ट्रॉन को यूज किया, देखें जरा, तो ये सब रोशनी की किस्में हैं। इस तरह कायनात का हर जर्रा खिला की सूरत में अल्लाह के इल्म में, और अल्लाह का इल्म क्या है, अल्लाह का नूर है। याद करें नूर की डेफिनेशन क्या है, कि अल्लाह का ख्याल है। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज का तर्जमा मैं हमेशा ये अर्ज करता हूं कि भाई इसका मतलब है कि कायनात जो है ये अल्लाह का ख्याल है। अब आप इन अल्फाज के, इन मीनिंग्स के साथ जब ये बात पढ़ेंगे तो ये जो किताब हमें बहुत दुश्वार लगती थी, इंशाल्लाह आइंदा इतनी दुश्वार नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पे इन सारी इस्तलाहात को मुख्तलिफ पैरायों में बताकर एक ही बात वाजे की जा रही है कि एक खालिक है, एक मखलूक है, खालिक के जहन में है मखलूक और वो दर्जा ब दर्जा नीचे आके अपना इजहार करती है और वापस चली जाती है। ला महदूदियत से आ रही है, महदूदियत में अपना तारुफ कराती है और वापस जा रही है। तो ये है अल्लाह का इल्म, अल्लाह का नूर है। जिस तरह कागज पर रंग की मौजूदगी में देखने वाले को रंग नजर नहीं आता, दरख्त नजर आता है, गौर करें, इसी तरह कायनात की शक्ल सूरत नजर आती है लेकिन नूर नजर नहीं आता। मिसाल देखें, सिर्फ कायनात का वो खिला नजर आता है जिस खिला में तस्वीर बनी हुई है, और इन इन खिलाई तस्वीरों का नाम, अब यहां पे ये खिलाई जिन मानों में आप और मैं इस्तेमाल करते हैं उन मानों में इस्तेमाल हुआ है कि खिलाई मखलूक, यानी कि हम एलियंस को, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज को खिला कह रहे हैं। तो इन खिलाई तस्वीरों के नाम चांद, सूरज, जमीन, आसमान, पहाड़, सब्जाजार, दरिया, समुंदर वगैरह वगैरह हैं। कागज के चारों तरफ रंग भर दिए जाएं और बीच में ऐसे नक्शो निगार बना दिए जाएं जो समुंदर की तस्वीर कशी करते हों, तो देखने वाला बरमला पुकार उठेगा कि ये समुंदर है। इसी तरह तमाम नौए अल्लाह का नूर है। यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। Thank you.